इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया और अयान की शादी हो जाती है। इस अध्याय में मेहंदी की रस्म के दौरान सारा स्टेज पर डांस करती है, जिसे इमरान पहचान जाता है। इसके बाद जोड़ियों में डांस होता है, पहले बुजुर्गों के साथ और फिर अयान और ज़ोया के साथ। अंत में वेद और मानवी डांस करते हैं। अभी तक सारा का ध्यान इमरान शाह की तरफ गया ही नहीं था, वही लड़का जिसे वो किले में मिली थी। इमरान की मॉम मिसेस शाह और नुसरत बेगम, सारा की मॉम, दोनों एक तरफ अकेले बैठी बातें कर रही थीं। दरअसल वे आपस में रिश्तेदार भी थीं और अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ने की सोच रही थीं। पहले से ही जुबैर और हीना की बात चल रही थी, लेकिन जब ईमान की मॉम ने, यानी इमरान की माँ ने, सारा को देखा तो उनके मन में नया ख्याल आया। उन्हें लगा, अगर हीना का रिश्ता जुबैर से हो सकता है तो क्यों ना सारा का रिश्ता इमरान से कर दिया जाए। मंच पर नाचती हुई सारा उन्हें इमरान के लिए बहुत पसंद आई थी, इसी बारे में वे दोनों बातें कर रही थीं। मुस्कुराते हुए मिसेस शाह ने कहा, देखिए बहन, आप हमें अपनी सारा दे दीजिए और बदले में हमारी हीना को ले जाइए। नुसरत बेगम एक पल को चौंक गईं। क्या मतलब? मिसेस शाह ने बात साफ करते हुए कहा, अरे देखिए ना, आपकी बेटी कितनी प्यारी है, मैं अपने इमरान के लिए उसका रिश्ता सोच रही थी। वैसे भी अगर दोनों बहनों के बच्चे आपस में शादी कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी, ना आपको हीना की चिंता रहेगी ना मुझे सारा की। नुसरत बेगम थोड़ी असमंजस में बोली, मगर सारा तो अभी पढ़ रही है, छोटी है, उससे बड़ा तो दानिश है। बात सच थी, सारा अभी कम उम्र की थी और घर में दानिश उससे बड़ा था, मिसेस शाह ने समझाया। तो फिर निकाह अभी कर दीजिए, रुखसती 2 साल बाद करवा देंगे, और अगर निकाह नहीं करना चाहती तो सिर्फ सगाई ही कर दीजिए। लेकिन बहन, सारा मुझे बहुत पसंद आई है, नुसरत बेगम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। देखो, मुझे सारा के डैड से बात करनी पड़ेगी, वैसे भी सारा से बड़ी तो ज़ारा है, उसके चाचा जान की बेटी। बड़े बच्चों को छोड़कर छोटे का रिश्ता करना आसान नहीं होगा। इस पर मिसेस शाह फिर से मुस्कुराईं। कोई बात नहीं, आप बस बात आगे बढ़ाइए, मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे को कोई इनकार नहीं करेगा। इमरान डांस फ्लोर पर आगे नहीं आया था, मगर उसकी निगाहें लगातार सारा पर टिकी हुई थीं, वही लड़की जिसे वो किले में मिला था। उम्र में भले ही वो उससे छोटी थी, लेकिन दिल तो दिल है। इमरान पहली नज़र में ही उस पर हार चुका था, और आज जब उसे फिर से देखा तो उसके दिल पर बिल्कुल काबू नहीं रहा। डांस का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, मेहंदी लग चुकी थी और अब खाने पीने का सिलसिला चल रहा था। सारा भी एक कुर्सी पर बैठी हुई प्लेट में चम्मच से खाने की कोशिश कर रही थी। हाथों पर मेहंदी लगी होने की वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। उसकी हील्स साइड में पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी देर से खड़े रहने की वजह से पैरों में दर्द हो रहा था। अचानक किसी ने उसके पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। सारा ने हैरानी से सिर उठाकर देखा, वो इमरान था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो मैं मदद कर दूं। ये बात उसने पंजाबी और हिंदी दोनों में मजाकिया अंदाज में कही। सारा का पारा तुरंत चढ़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तेज आवाज में पूछा। कल किले में उसने उसे कुर्ता पायजामा पहने देखा था, और आज भी इमरान ने सफ़ेद पठानी सूट पहन रखा था, गले में दुपट्टा पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब के लड़के पहनते हैं। इमरान जरा झुककर बोला, आपके पीछे पीछे चला आया हूँ। उसकी बात में शरारत साफ झलक रही थी। सारा गुस्से से उठने लगी, वो उसके पास बैठना बिल्कुल नहीं चाहती थी। जल्दी जल्दी अपनी हील्स पहनने लगी। तभी इमरान झुककर उसका जूता उठाने लगा और हल्के से उसके पैर के पास रखते हुए मुस्कुराकर बोला, हाथों पर मेहंदी लगी है, कम से कम जूता पहनने में तो मदद ले लीजिए। सारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सारा झटके से पीछे हट गई। ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा। पर दिल से तो चाहिए, है ना? सारा का गुस्सा और भड़क उठा। तुम्हें क्या लगता है, मैं हर किसी अजनबी से दोस्ती कर लूंगी? इमरान ने तुरंत जवाब दिया। अजनबी? मैंने तो सोचा था कि किले वाली मुलाकात के बाद हम थोड़े अपने हो गए हैं, सारा ने तुनक कर कहा। वो तो बस इत्तेफाक था और बस एक बार की बात थी, इमरान झुककर धीरे से बोला। कुछ इत्तेफाक जिंदगी बदल देते हैं सारा। सारा की आंखें पल भर को ठिठक गईं, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली। वो अपनी प्लेट उठाकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। इमरान पीछे से उसकी ओर देखकर धीमे से मुस्कुराया। बकवास नहीं, ये तो बस शुरुआत है। सारा तेज कदमों से वहां से निकल गई, मगर उसके दिल की धड़कनें अभी तक काबू में नहीं थी। अयान ने ज़ोया को फोन करके होटल के हॉल में बुलाया था। वहां गौतम पहले से बैठा हुआ था। उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर थे। उन शर्तों के मुताबिक अयान को ज़ोया की हर बात माननी थी। असल में अयान ने गौतम को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे अकेले ज़ोया के सामने जाने से डर लग रहा था, कहीं वो पलट ना जाए। ज़ोया आई और बिना किसी हिचके के कागजात पर साइन कर दिए। एक नज़र उसने अयान पर डाली और फिर तुरंत वहां से उठकर चली गई। अयान उसकी जाती हुई परछाई देखता रहा और ठंडी सांस लेकर बोला, काश जैसे आज हम दोनों ने साथ नाचा था वैसे ही सारी उम्र उसकी खुशी के साथ गुजार पाता। वेद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। फिक्र मत कर भाई, वैसा ही होगा, अयान ने बात बदलते हुए पूछा। वैसे मानवी भाभी का गुस्सा कुछ कम हुआ, अब कैसा है माहौल? वेद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभी तक मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं, बस नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन मुझे पता है इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इतने में गौतम खड़ा हो गया और बोला, तो ठीक है मैं चलता हूँ। अब दोनों दोस्त ही वहां पर रह गए थे। तो कैसा चल रहा है मानवी भाभी के साथ तुम्हारा, अयान ने पूछा। आज जब मानवी सोफे पर सो गई थी और मैं उसे देख रहा था तो पता है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। खुद पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल था मैं ही जानता हूँ, वेद कहने लगा। अयान ने शरारती अंदाज में उसे टोका। कहीं भाभी के साथ चीट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? देख यार, एक बात याद रखना, हमें बदलना पड़ेगा, वेद मुस्कुराकर बोला। किसी और की चाहत तो है ही नहीं मुझे, अब तो बस मानवी ही चाहिए। सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे उसे हमेशा के लिए अपना बना लूं। अयान हंस पड़ा। तेरे ख्याल बड़े ही खतरनाक है। वैसे मैं अब डैड के पास जा रहा है, उन्हें बताता हूँ जोया अब तैयार है, वेद ने चुटकी ली। अगर जोया रुखसती के लिए तैयार हो गई तो जल्दी से तू उसे ले आ, फिर तुझे कितनी जल्दी होगी उसे अपने कमरे में लाने की? अयान मुस्कुराया और धीमे से बोला, कमरे में ही नहीं, बाहों में भी। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन उनके दिल के अंदर की बेचैनी अपने अपने रिश्तों को लेकर साफ झलक रही थी। तभी वहां माया आई, शायद ये उसकी आखिरी कोशिश थी। मैं, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, उसने कहा। आप बैठिए। अयान वहां से उठकर चला गया क्योंकि उसे अपने डैड से बात करनी थी। माया ने धीमे स्वर में कहा, मैं आज शाम को यहां से जा रही हूँ, वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कम से कम शादी देखकर ही जाओ, माया ने थोड़ा डबल मीनिंग अंदाज में जवाब दिया। बिल्कुल रुक सकती हूँ अगर आप चाहें तो, वेद ने बात मोड़ दी। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि जो मेहमान यहाँ आए हैं वे सभी शादी देखकर ही जाएं, माया उसकी ओर करीब झुकते हुए बोली। मगर मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो आज रात हम दोनों इस होटल से बाहर चल सकते हैं। मुझे पता है कि आपकी बीवी भी है, लेकिन, वेद ने बीच में ही उसकी बात काट दी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है।
तुम्हें खुद याद होना चाहिए, मेरी बीवी है और जब वो है तो मुझे अपनी जरूरत के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया का चेहरा उतर गया, उसे साफ समझ आ गया कि वेद के लिए अब उसके दिल में कोई जगह नहीं बची।